कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हर रविवार को यहाँ पे रविवार यह सत्संग कार्यक्रम होता है। जो भी बहुत सारे डे विजिटर्स आते हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं, और यहाँ के जो रहवासी हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम होता है। तो जैसे अभी 11 बज रहे हैं, 11 से 12 बजे तक यहाँ पे कथा होगी। शायद नवरात्रि के दिन आपको आज वीकेंड नहीं वीक डे लग रहा है आज, है ना? तो लग रहा है कि सोमवार से शुक्रवार का दिन कोई चल रहा है, लेकिन रविवार के दिन इतनी शांति नहीं होती यहाँ पे, बहुत कुछ चलते रहता है। मैं भी अभी यहाँ पे आया तो मुझे लग रहा है आज कौन सा, आज रविवार है कि कोई दूसरा दिन है आज। तो ये प्रोग्राम 11 से 12 बजे तक यहाँ पे कथा होगी, उसके बाद 12 से 12:30 बजे आरती होगी, और 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है हमारे ललिता भवन हॉल में। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाके आप ललिता भवन हॉल में प्रसाद की व्यवस्था सबके लिए होगी। जो भी यहाँ पे ये रविवारी सत्संग कार्यक्रम करते हैं उनके लिए कुछ कूपन बांटे जाते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ये प्रवचन भी अटेंड करेंगे तो 11:30 के आसपास यहाँ पे कूपन बांटे जाएंगे। तो वो कूपन आप लेके आपको विशेष प्रसाद कुछ दिया जाएगा ललिता भवन हॉल में, तो वो प्राप्त कर सकते हैं उससे वहाँ से। और उसके अलावा यहाँ पे जो प्रोग्राम है, जैसे वृंदावन फॉरेस्ट है हमारा, जो मथुरा वृंदावन का एक प्रति वृंदावन हमने यहाँ पे बनाया है, उसकी गाइडेड टूर रहती है। तो हर एक घंटे में ये टूर निकलती है। तो इसका ऑफिस जो है, टेम्पल रिसेप्शन ऑफिस हमारा नीचे ही है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस टूर के लिए। तो आज के हमारे कथाकार है श्रीमान लक्ष्मण प्राण प्रभु। तो प्रभु जी जो है, ये खुद सिविल इंजीनियरिंग है इन्होंने की है। प्रभु जी पूना में कई साल उन्होंने जॉब किया है, लगभग 35 साल वो वहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पे नाइक नवरे करके वहाँ पे जॉब करते थे। और भक्ति में 22 साल से प्रभु जी भक्ति में है, और पुणे में काउंसलर भी है। उनके घर पे ऐसे हर शुक्रवार के दिन प्रोग्राम होता है, कई 100 से अधिक लोग वहाँ पे आते हैं, कथा सुनते हैं और ये भक्ति का लाभ लेते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी से आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है गीता के बारे में सुनने का। तो हम यहाँ पे पारंपरिक पद्धति से 3 बार एक साथ हरि बोल बोल के इनको जो है आभार व्यक्त करेंगे इनके। सब लोग बोलिए हरि
हरे
बोल, हरि
कृष्णा,
बोल, हरि बोल।
हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। राधा माधव कुंज बि जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचरी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचरी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचरी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंजब जी हरि गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चरी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चरी नंदन ब्रज जन रंजन यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धरी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चरी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चरी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चरी ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन ललिता देवी, राधा मदन मोहन ललिता देवी, जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, हरे कृष्णा। अभी हम भगवद गीता के एक श्लोक पे चर्चा करेंगे, अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 11। मैं दोहराऊंगा, आपको मेरे पीछे बोलना है। सर्वद्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या
विवृद्धं सत्वम् इति उत सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत अनुवाद सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तात्पर्य शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतर तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवों का गोवर्धन कॉलेज में स्वागत है आज के रविवारी सत्संग संडे फीस्ट प्रोग्राम में। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है गुणों के बारे में ज्ञान। तो गुण जो होते हैं वो हमारे आंखों को दिखते नहीं, लेकिन एक अदृश्य फोर्स बल होता है। 3, एक होता है सत्वगुण, दूसरा होता है रजोगुण और तीसरा तमोगुण होता है। भगवद गीता में एक श्लोक में बोला गया है, प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। मतलब हम कर्म तो करते हैं 3 गुणों से प्रभावित होके, तो विवश होके हमें कर्म करना पड़ता है 3 गुणों के फोर्स के। इसके हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारी पाप करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन अगर हम तमोगुण में है रजोगुण में है तो तो हमारे हाथ से पाप हो जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हमारे हाथ में क्या है फिर, अगर कर्म करना भी हमारे हाथ में नहीं है तो क्या है हमारे हाथ में? तो हमारे हाथ में है कि हम जिस गुण का चाहे उस गुण का हम संग कर सकते हैं। जैसा हम संग करेंगे जिस गुण का, उसके हिसाब से हमारा स्वभाव बनेगा। तो जो पहले तो जो तमोगुण है उसके थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो तमोगुण में क्या होता है कि अज्ञान होता है, ज्ञान का अभाव होता है, और अज्ञान में जीवात्मा सुख भोगने की इच्छा करता है। और ये तमोगुण बोलता है कि ये जो अज्ञान का सुख है उसको भोगो, और जैसे ही जीवात्मा इस अज्ञान का सुख भोगता है तो तीन बंधन उसे प्राप्त होते हैं। एक होता है प्रमाद, और दूसरा आलस, और तीसरा निद्रा। तमोगुण में तीन प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं, एक होता है प्रमाद, दूसरा आलस्य, और तीसरा निद्रा। प्रमाद का मतलब है एक प्रकार का पागलपन। जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता है, नशा करता है, नशा करने के बाद उसको जो कष्ट है उसके जीवन में, जो दुख है, वो कुछ समय के लिए भूल जाता है और खुद को बहुत सुखी समझता है। वैसे तो पड़ा रहता है गटर में, लेकिन खुद को बहुत सुखी समझता है। उसी तरह ये तमोगुणी जो व्यक्ति होता है वो अज्ञान में बहुत खुद को सुखी समझता है, अज्ञान में बहुत सुखी समझता है खुद को, तो इसको बोलते हैं पागलपन। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पिता के पिता मर गए, कुछ दिन के बाद हमारे माता पिता भी गुजर जाएंगे, कुछ दिन बाद हम भी मरेंगे, हमारे बच्चे भी मरेंगे, लेकिन सब सोचते हैं कि इस तरह जीवन जीते हैं कि जैसे हम कभी मरेंगे नहीं। धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, है ना, इस तरह इकट्ठा करते हैं जैसे कि हमारा कभी अंत होने वाला नहीं। और जो शाश्वत आत्मा है, जो हम है एक्चुअली, हमारा जो शाश्वत आत्मा है, तो उसका आध्यात्मिक उत्थान के लिए हम कुछ नहीं करते, सिर्फ इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है ना उसी के बारे में हम सोचते हैं, और धन इकट्ठा करके उस सुख को भोगने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार का ये पागलपन ही है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का पागलपन ही है। ये हो गया एक प्रकार का एक बंधन, जिसको बोलते हैं प्रमाद, जिसको बोलते हैं पागलपन। जैसे भागवतम में कथा आती है नल कुबेर और मणिग्रीव की। एक बार नारद मुनि अपने रास्ते से निकल रहे थे तो एक तालाब में ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव नग्न अवस्था में कुछ स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। और ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र है, तो कुबेर स्वर्ग के देवता जो है और स्वर्ग के खजांची है, पैसे के मालिक, तो उनके पास बहुत धन है। तो घर में बहुत धन होने की वजह से ये दो जो पुत्र थे उनके, वो बिगड़ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब थोड़ा संपत्ति ज़्यादा आती है, भौतिक लक्ष्मी ज़्यादा आती है, तो हमारा भक्ति भावना उस लक्ष्मी के नीचे दब जाता है और हम अहंकारी बन जाते हैं। जैसे कुबेर के पुत्र जो है ना, उनको नशा करने का आदत लग गया और स्त्रियों के साथ नग्नावस्था में उधर तालाब में क्रीड़ा कर रहे, तो एक प्रकार का ये पागलपन ही है, ये प्रमाद ही है। और जैसे नारद मुनि आते हैं तो स्त्रियां तो अपने शरीर पे वस्त्र ढक कर लेती है, लेकिन ये नल कुबेर और मणिग्रीव वैसे वैसे खड़े रहते हैं। उनको इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि एक महान वैष्णव अभी आए हैं तो उसको प्रणाम करना चाहिए, कम से कम अपने शरीर पे कपड़े होना चाहिए, इसका भी ध्यान नहीं रहता उसका। तो ये एक प्रकार का प्रमाद है, ये पागलपन में थे। तो फिर नारद मुनि ने सोचा कि इनको थोड़ा ये करेंगे, ठीक करेंगे। तो नारद मुनि ने उनको शाप दिया कि तुम्हें वृक्ष का शरीर प्राप्त हो दोनों को। फिर ये दोनों जो नारद मुनि ने शाप दिया था, वैसे फिर यमलार्जुन नाम के वृक्ष बन गए नंद बाबा के घर में। और बाद में जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए बहुत साल बाद, तो भगवान तो कृपालु है ही, तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, और कौन किधर दुख भोग रहा है क्या सब तो भगवान को पता है। तो नारद मुनि ने जैसे उनको शाप दिया था कि बाद में तुम्हारा उद्धार होगा, फिर भगवान ने उनका उद्धार किया। और भी एक कथा आती है, बलि महाराज के एक पुत्र है मंदगति करके, तो वो भी बहुत अहंकारी थे। उनके पास 100,000 हाथी का बल था। अभी महाभारत में भीम के पास कितना बल था, 10,000 हाथी का। तो बलि महाराज का जो पुत्र है मंदगति, उसके पास 100,000 हाथी का बल था। और उस बल होने की वजह से उसमें एक प्रकार का अहंकार आ गया, प्रमाद में चला गया, वो पागलपन में चला गया। और फिर एक बार की कथा है कि जब रंगनाथ की यात्रा थी और बहुत सारे यात्री लोग भक्त लोग यात्रा को निकल रहे थे रास्ते में, चलते चलते यात्रा में, और फिर ये लोगों के साथ में ये भी मंदगति भी निकल गया उनके साथ में रंगनाथ जी की यात्रा को। अभी ये मस्ती में ऐसा चल रहा था कि लोगों को कुचल रहा था, इनके हाथ तो इनके पास तो बहुत बल था ना, तो ऐसा ऐसा हाथ करता था हवा से लोग उड़ जाते थे। तो ऐसा चल रहा था तो एक त्रित मुनि नाम के ऋषि थे, तो उनको भी लग गया इनका थोड़ा हाथ हवा में। तो फिर ऋषि, अभी ऋषि तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़े चंडे रहते हैं, तो उन्होंने इनको शाप दिया कि तेरे को बहुत मस्ती चढ़ी है ना, तू हाथी का शरीर तेरे को प्राप्त हो। तो फिर ये हाथी बन गए शाप की वजह से। और फिर ये कुवला या पिंड करके नाम का जो हाथी है, जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं तो पहले इस हाथी का उद्धार करते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है और करुणा है भगवान के हृदय में, कौन कितना भी पापी रहने दो, भगवान तो उद्धार करते हैं उसका। तो फिर भगवान ने उस हाथी को, भगवान के हाथ से जो भी व्यक्ति जीवात्मा को देहांत होता है मतलब, तो उसको परम गति प्राप्त होती है, गोलोक धाम जाता है, वैकुंठ लोक जाता है। तो हाथी का भी उद्धार करते हैं भगवान कृष्ण। तो इन दो कथाओं से हमें तमोगुण का जो प्रमाद है, पागलपन है, तो उससे पता चलता है कि प्रमाद किसे कहते हैं। तो ये अहंकारवश आदमी पागल बन जाता है, जैसे कि दारू के नशे में आदमी सब कुछ अपने कष्टों को भूलता है और खुद को बहुत सुखी समझता है, लेकिन रहता है अज्ञान में, है तो बहुत बड़े अज्ञान में लेकिन खुद को बहुत सुखी समझता है ना। कुछ कुछ भौतिकवादी लोग सोचते हैं अभी क्या है, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, अभी इतना मेरा बैंक बैलेंस है, अभी कुछ साल के बाद मेरा और इतना हो जाएगा, है ना, मेरे पुत्र है इतने, मेरी पत्नी है, सुखी कुटुंब है मेरे पास, मेरे पास क्या कमी है और मुझे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, तो मैं खुद भगवान हूँ ऐसा मैं जिधर पैर रखता हूँ उधर सफलता आती है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो काल रूपी सर्प है वो मुंह फैला के आ रहा है उसके पास, उसको समझ में नहीं आता उसको, वो एक तरह का ये पागलपन है। तो ये पागलपन में तीन बंधन प्राप्त होते हैं तमोगुणी व्यक्ति को, एक है प्रमाद, फिर दूसरा आलस्य। आलस्य मतलब आलसी होता है तमोगुणी व्यक्ति, जब कोई काम रहता है समझो 1 घंटे में कोई काम हो सकता है, वो सालों सालों घसीटते रहता है उसको, आज करूंगा कल करूंगा, है ना, अभी करता हूँ। 1 घंटे का ही काम है, करना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, लेकिन करता नहीं, महीनों महीनों सालों सालों घसीटता रहता है, हाँ करूंगा कर रहा हूँ करता है, तो इसको बोलते क्या है, आलसी। और प्रभुपाद बताते हैं आलसी व्यक्तियों को हम मंदिर में आने के लिए आमंत्रण करते हैं, कथा है भगवान का, कीर्तन है, प्रसाद है, सेवा है, तो मंदिर में आ जाओ, तो आलसी व्यक्ति बोले हाँ आएंगे मंदिर में, है ना, आ रहा हूँ। जब हम माला करने को बोलते 1 माला करो 2 माला करो, हाँ कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, जल्दी बढ़ता ही नहीं, तो ये है एक प्रकार का आलस्य। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आलसी होता है वो हमेशा निद्रा में ही रहता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, आलस्य है। और फिर क्या बचा, निद्रा। अभी मनुष्य के लिए 6 घंटे का निद्रा सफिशियंट है। शिल प्रभुपद बताते हैं कि व्यक्ति को 6 घंटा निद्रा नींद सफिशियंट है, लेकिन जो तमोगुणी लोग होते हैं वो 10-10, 12-12 घंटा सोते हैं, है ना। तो जैसे कि रामायण में कुंभकर्ण का कथा आता है, तो कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, सबसे बेस्ट तमोगुणी उदाहरण कुंभकर्ण नींद का, सूर्य का, तो 6-6 महीने सोता था। तो 12-12 घंटे 10-10 घंटा सोते हैं तमोगुणी व्यक्ति, है ना। तो ये 3 प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं तमोगुणी व्यक्ति को। पहला क्या है, प्रमाद, दूसरा क्या है, आलस, और तीसरा निद्रा। तो रामायण के 3 जो पात्र है, एक है विभीषण, दूसरा है रावण, और तीसरा है कुंभकर्ण। तो विभीषण तो सात्विक है, सत्वगुणी है, रावण तो राजसिक है, और तीसरा ये विभीषण कौन है, तामसी है, वो ज़्यादा सोता है, खाने को भी उसको बहुत कुछ लगता है, मांस मटन, है ना, बहुत आहार लगता है उसको। तो 3 व्यक्ति के 3 कैटेगरीज है रामायण में। तो ये तो हो गए, हमने थोड़ा चर्चा किया तमोगुण का। तो ये जो तमोगुण का खेल है ये तो चलता ही रहता है। तो कभी तमोगुण सत्वगुण को परास्त करता है, कभी रजोगुण को परास्त करता है। तो जब तमोगुण व्यक्ति के अंदर बढ़ता है ना, तो वो नशे में जाता है, दारू पीने की आदत लगती है, तो अनेक प्रकार का गांजा चरस वैसे ऐसे नशे करते हैं ना लोग। तो जब तमोगुण में व्यक्ति जाता है, तो जैसे कि प्रभुपाद एक बताते हैं, डेविड नाम का कोई उनका एक व्यक्ति था फॉरेन में, अमेरिका में। तो प्रभुपाद के संग में आया वो, प्रभुपाद उससे बहुत कुछ चाहते थे, उनको बहुत शिक्षा दिया प्रभुपाद ने, वो प्रवचनकर्ता प्रचारक बनाना चाहते हैं प्रभुपाद, फिर वृंदावन ले जाके कैसे पूजा करते भगवान श्री कृष्ण का वो भी सिखाने का सोच रहे थे। लेकिन ये बुरी संगत में पड़ गया, कौन, डेविड। और फिर वो फॉरेन में तो क्या क्या नशे होते हैं ना, आपू वगैरह क्या क्या रहता है, चरस बिरस, तो नशे में पड़ गया और प्रभुपाद के ऊपर ही गुर्राने लगा। तो फिर प्रभुपाद को भागना पड़ा उससे। तो इस तरह वो तमोगुण में जब व्यक्ति जाता है, तो प्रभुपाद जैसे गुरु के पास जाने के बाद भी मतलब उसका कुछ लाभ नहीं होता उसका, क्योंकि तमोगुण बहुत बढ़ गया है उसका। तो ये हो गया तमोगुण के बारे में। अभी हम थोड़ा रजोगुण की चर्चा करेंगे। रजो रागात्मक का विद्या ऐसा बोला गया है रजोगुण में। तो रजोगुण में क्या होता है, राग बढ़ता है। तो राग का मतलब हमारे 5 इंद्रिय होते हैं ना, ज्ञानेन्द्रिय। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय होते हैं। जैसे कान का विषय क्या है, श्रवण करना, आंखों का विषय है देखना, त्वचा का विषय है स्पर्श करना, जीवा का विषय है रस का आस्वादन करना, है ना। तो ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिय है, वो हर एक ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय होते हैं। तो व्यक्ति उस विषय को जो भोगने की इच्छा होती है अंदर, वो तो उसको बोलते हैं राग। उस इंद्रियों को वो विषय चाहिए किसी भी हालत में भोगने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, राग। और जब किसी के अंदर राग होता है ना, तो द्वेष भी आता है उसके साथ में, ऐसा है नहीं कि सिर्फ राग है। तो प्रभुपाद समझाते हैं, आजकल जो प्रेम विवाह होते हैं ना, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष के आकर्षित होती है, और दोनों में जो विवाह होता है, तो पहले तो इसको प्रेम विवाह बोला जाता है, तो लेकिन उसमें प्रेम नहीं होता। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें क्या है, राग है, वो उसको प्रेम विवाह बोला नहीं जाता। मतलब बोलते हैं लोग, लेकिन उसमें प्रेम होता है क्या, नहीं। जैसे ही कुछ साल के बाद वो जो राग होता है ना, द्वेष में परिवर्तित होता है। जब एक दूसरे की इच्छा हम पूर्ति नहीं कर सकते बाद में, तो फिर वो राग किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रेम में। फिर आप देखते हो बहुत से तलाक हो जाते हैं, तलाक नहीं भी हुआ तो दूरी बनी रहती है पति पत्नी में। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भौतिक जगत का निर्मिति भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह किया है कि जो पति पत्नी होते हैं ना, तो उसमें किसी न किसी कारणवश जो है ना तो जमता ही नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है बाद में। थोड़ा नया नया शादी होने के बाद थोड़ा रहता है कुछ साल तक राग, बाद में वो देश में परिवर्तित होता है और दूरी बनी रहती है पति पत्नी में। तो जो पहले जो प्रेम रहता है ना वो बाद में रहता ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति बनाई ही ऐसी है कि भगवान चाहते हैं इधर से जल्दी निकल जाए हम, है ना, ये हमारे रहने के लिए लायक स्थान है क्या? नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे? इधर से जल्दी निकलना चाहिए। तो सच्चे हमारे जो प्रेम करने वाले हमारे ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना, तो उधर हमको जाना है ना, इसलिए इधर जो है ना पति पत्नी का जमता ही नहीं कभी बाद में, है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है। तो रहते साथ में, बहुत से गृहस्थ जो है ना पहले के जमाने में रहते थे क्योंकि उनके अंदर भक्ति भावना रहती थी, आखिर तक वो एक दूसरे को सम्मान दे के बूढ़े होने के बाद भी रहते थे पहले के जमाने में। लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है, बहुत से तलाकी हो जाते हैं, नहीं तो दूरी बनी रहती है और कुछ ना कुछ उनमें ये रहता ही है द्वेष भावना। तो बहुत बार तो हम देखते हैं कि पत्नी पति की हत्या कर देती है, पति पत्नी की हत्या कर देता है, ऐसे पेपर में बहुत आता है ऐसा। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं है, राग है, हर कोई अपने इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है ना। तो ये इंद्रियों के जो विषय है ना उसको भोगने की जो इच्छा होती है वो होता है राग। और वो राग जब बढ़ जाता है, जब रजोगुणी व्यक्ति राग बढ़ता है तो फिर उनके हाथ से बहुत सारे पाप हो जाते हैं, बुरे कर्म हो जाते हैं। जैसे शास्त्र में अजामिल की कथा आती है भागवतम के छठे स्कंद में। अजामिल तो अच्छा भक्त था पहले, एक बार वो फूल लाने गया था जंगल में, है ना, जो पतित होने के पहले अजामिल है ना वैष्णवों को, गुरु को, जो वरिष्ठ पिता माता है उनको सम्मान देता था, भक्त का जैसा आचरण था अजामिल का, अच्छा भक्त था। लेकिन जैसे एक बार उनके पिताजी ने उनको फूल जैसे पान कुछ लाने के लिए बोला जंगल से पूजा के लिए, और जंगल में जब जाता है तो वो दृश्य देखता है वो, जिसमें एक क्षुद्र व्यक्ति एक वेश्या को आलिंगन करता है, करने का दृश्य, और उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं। जैसे ही वो देखता है उसने बहुत प्रयास करता है कि अपने सात्विकता के बल पर उसको नियंत्रित करे, लेकिन रजोगुण इतना बढ़ जाता है अंदर कि रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को परास्त करता है। उधर राजसी वृत्ति बहुत बढ़ जाती है, मतलब भोगी वृत्ति बहुत बढ़ जाती है। शास्त्र में जितने भी नियम दिए हुए सब स्मरण करने का प्रयास करता है लेकिन रजोगुण बढ़ने की वजह से उसको नियंत्रित नहीं कर पाता वो। और बाद में हम कथा श्रवण करते हैं कि उसी वेश्या को बाद में वो घर में लाता है और फिर उसके साथ विवाह भी करता है। अपने पत्नी वैष्णव होती चांगली अच्छी वैष्णवी तो उसको घर से बाहर निकालता है, माता पिता को भी घर से बाहर निकालता है, फिर उस वेश्या के साथ विवाह करता है, 10-12 बच्चे पैदा भी करता है उस वेश्या के। लेकिन बाद में पहले भक्ति किया रहता है इसलिए भगवान श्री कृष्ण, मतलब जब उसको ये गुणों का खेल जब पता चलता है ना, ये जो मैं क्या था और अभी क्या हो गया है ना, तो फिर ये गुणों का खेल जब उसको पता चलता है बाद में, तो आखिर में आपको कथा पता है जब बच्चे का नाम नारायण रखता है तो फिर वो हरिद्वार जाता है ना, हरिद्वार जाके फिर भक्तों का संग करके वैष्णवों का संग करके फिर उधर सत्वगुण बढ़ाता है और साधना करता है और फिर आखिर में उसको भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है, इतना पापी व्यक्ति को भी। लेकिन कहने का मतलब ये क्या है कि जैसे कोई ऐसे दृश्य है जो अजामिल ने देखा, तो प्रभुपाद तो बोलते कलयुग में तो ये बहुत कॉमन है, जो दृश्य अजामिल ने देखा था ना वो तो कलयुग में हमको ऐसा गली गली में एडवर्टाइज ये वो मोबाइल देखने को मिलता है, तो उसको नियंत्रित करना आजकल कलयुग में बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद एक तरह से हमको वार्निंग देते हैं कि तो इस रजोगुण से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, और ये तीन गुणों का जो खेल है उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ताकि हमारे अंदर का जो रजोगुण ना बढ़े। तो ये सत्वगुण जब बढ़ जाता है तो हमारे सामने राग का प्रलोभन होता है कि उस राग को हम भोगे, और जैसे ही हम उस राग को भोगते हैं तो फिर बंधन प्राप्त होता है। वो बंधन कैसा है फिर, तो व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है, और उसमें दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, एक होता है तृष्णा और दूसरा होता है आसक्ति संग, तृष्णा संग समुद्भवम। तो तृष्णा का मतलब जो वस्तु हमारे पास है नहीं अभी उसको प्राप्त करने की इच्छा, आसक्ति है एक प्रकार की, लेकिन एक वस्तु हमारे पास नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, और आसक्ति मतलब जो वस्तु हमारे पास है ऑलरेडी उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, उसको हम छोड़ते नहीं, उसको क्या बोलते हैं आसक्ति। जैसे कि महाभारत में दुर्योधन का कथा आता है ना, तो दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिल गया है ना, पितामह भीष्म ने इंद्रप्रस्थ अलग कर दिया और पांडवों को क्या दिया इंद्रप्रस्थ दिया। अभी दुर्योधन का पास तो यह हस्तिनापुर का राज्य है, ऐसा संपत्ति पैसे की कुछ कमी नहीं है ना, और पांडव को क्या है इंद्रप्रस्थ दे दिया गया। अभी खुश नहीं है तो उनको दुर्योधन को क्या चाहिए, वो इंद्रप्रस्थ भी चाहिए उसको, फिर वो दूध क्रीड़ा वगैरह करता है ना वो, और फिर मतलब इसको क्या बोलते हैं इंद्रप्रस्थ उसके पास है नहीं लेकिन उसको प्राप्त करने की इच्छा जो है उसको क्या बोलते हैं तृष्णा, मतलब जो इंद्रप्रस्थ उसके पास है नहीं अभी वो, लेकिन प्राप्त करने की इच्छा है उसके अंदर, तृष्णा है। हमारे पास अभी टू व्हीलर है, हमें फोर व्हीलर चाहिए, तो ये क्या है तृष्णा है, हमारे पास वो वस्तु है नहीं लेकिन उसको हमें प्राप्त करना है, तो ये रजोगुण का प्रतिफल है, ये दोष है। और बाद में हम देखते हैं कि उसको इंद्रप्रस्थ भी मिल गया जुआ खेल के, अभी इंद्रप्रस्थ भी किसका है दुर्योधन का है, और हस्तिनापुर भी दुर्योधन का है। पांडव वनवास जाते हैं 12-13 साल वनवास करके फिर वापिस आते हैं ना, और ये जब ये समय आता है कि अभी इंद्रप्रस्थ उनको देना चाहिए क्योंकि 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास सब हो गया ना अभी, तो जब पितामह भीष्म जैसे सीनियर लोग बोलते हैं कि अभी उनको दे दो, तो छोड़ना नहीं चाहता है, मतलब अभी जो उसके पास वस्तु है ना उसके प्रति उसका उसका क्या हो गया आसक्ति, आसक्ति संग बढ़ गया, अभी उस वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता है। जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं शांति दूत बन के प्रस्ताव लेके, दे दो उसको, वो बोलता है मैं कुछ नहीं दूंगा, सुई चटक और बस लेवड़ी माती सुद्धा मैं देना नहीं है ना, ऐसा बोलता है दुर्योधन। तो इस तरह जो वस्तु हमारे पास है उस वस्तु के प्रति जब आसक्ति हमारी बढ़ती है ना, तो वो क्या है रजोगुण का प्रतिफल है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक कथा बताते हैं कि एक नावाड़ी था और नाव में सब लोग बैठ गए और उनको जाना था नदी से पानी में नाव से प्रवास करके किसी दूसरी जगह पे, और रात को समझो सुबह तक पहुंचना चाहिए था 6-7 बजे तक। तो ये नावाड़ी नाव में बैठता है, ये सब यात्री बैठ जाते हैं, फिर ये नाव वल्लभ नाव इसका चालू हो जाता है, फिर कोई भजन गाता है कोई कीर्तन करता है फिर गप्पा गुष्टी करते सुबह सुबह हो जाती है। जब दिन निकलता है तो सब लोग देखते हैं कि नाव उधर ही है आगे गया नहीं तो सब लोग सोचते हैं नाव ये रात भर इन्होंने नाव का ये घुमाया लेकिन नाव तो आगे गया नहीं, क्यों नहीं गया क्योंकि उसका लंगर उसने छोड़ा नहीं था। तो नाव जब एक जगह पे रुकते हैं ना तो उसको रस्सी से बांधा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं लंगर, तो लंगर उसने छोड़ा ही नहीं तो नाव आगे कैसे जाएगा, कितना भी तुम ऐसा करो नाव जाएगा क्या आगे। तो ये लंगर क्या है आसक्ति है हमारा है ना, जब तक ये आसक्ति हमारा निकलता नहीं लंगर इधर से उसको छोड़ना चाहिए ना, तभी हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगा। तो प्रभुपाद ये भी समझाते कि एक बंदर था और एक बाटली के अंदर शेंगदाना था, तो बंदर भागते आता है, घर में कोई नहीं, देख के बाटली के अंदर हाथ डालता है, और जब जैसे ही शेंगदाना मुट्ठी में लेता है ना बंदर, तो बाटली का मुंह छोटा होता है ना, तो शेंगदाना निकलता नहीं बाहर, तो कितना भी प्रयास करो निकलेगा क्या बाहर, क्योंकि अभी बुट्टी क्या हो गई, बड़ी हो गई, पहले तो गया हाथ अंदर, अभी निकलेगा क्या, नहीं, कब निकलेगा, शेंगदाना छोड़ना चाहिए ना। तो हमारा भी शेंगदाना ऐसा छुटता ही नहीं है, हम भौतिक जगत में जो है ना, हमारा आसक्ति होता है ना, हमारा आसक्ति छुटता है क्या, नहीं, तो पहले छोड़ो वो, जैसे बंदर बाद में वो घर का मालिक भी आ जाता है उधर, क्योंकि ये बंदर का प्रयास चालू रहता है निकालने का बाटली के हाथ, बाटली से, लेकिन शंखदाना जब तक छोड़ेगा नहीं निकलेगा नहीं। तो इस तरह हमें अनेक वैष्णव ये तृष्णा और संग ये समझाते हैं, और कर्म बंधन में फंस जाता है व्यक्ति, रजोगुण का प्रतिफल क्या है, कर्म बंधन में फिर हम फंस जाते हैं। जैसे आजमिल का हमने कथा श्रवण किया, तो आजमिल कैसे फंस गया, वो कितना पाप करता है ना, सब कर्म बंधन में फंस जाते, फिर हमें अनेक जन्म लग सकते हैं इससे ऊपर उठने के लिए। तो अभी हमने तमोगुण का थोड़ा चर्चा किया, तो ये गुणों का कैसा खेल है हम देख रहे हैं ना, तो अभी ये रजोगुण का थोड़ा हो गया, अभी हम सत्वगुण के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो सत्वगुण है ना, ये प्रकाश देना रहा है, हमारा ज्ञान प्राप्त मिलता है इसे सत्वगुण में, जब सत्वगुण में व्यक्ति होता है ना, उसको सही सही पता चलता है हम कौन है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इसके बारे में भी सद्गुण में जब व्यक्ति होता है ना, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है ना। तो जैसा कि एक डेविड नाम का व्यक्ति था फॉरेन में, तो जब वो 7 साल का था बच्चा, तो उसके पिता का देहांत हो जाता है, पिता का देहांत होने के बाद सब बोलते कि पिताजी तुम्हारे मर गए, तो उसको समझ में नहीं आता, शरीर तो इधर ही पड़ा है, तो क्या मर गए बोले तो क्या हो गया, है ना, तो शरीर अगर उधर ही पड़ा है पिता का, और सब लोग बोल रहे कि पिताजी चले गए, तो क्या चला गया उसके अंदर का, कोई तो ऐसा शक्ति है उसके अंदर जो चली गई ना। तो अगर हम बोलते हैं आत्मा को दिखाओ, तो देख सकते हैं आत्मा को, नहीं देख सकते, तो वो जो शक्ति है चेतना जो पहले शरीर में थी लेकिन अब क्या है, वो चली गई, तो वो क्या है, आत्मा है ना। तो कर्म के हिसाब से अगर हमें हाथी का शरीर प्राप्त होता है, तो हम खुद को क्या समझते हैं, हाथी समझते हैं, तो ये क्या है, सिर्फ शरीर के अंदर का परिवर्तन है ना। जैसे शरीर के अंदर 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो जैसे जन्म होता है, तो हम सोचते हैं कि अभी मेरा क्या हो गया, जन्म हो गया, फिर क्या परिवर्तन आता है शरीर के अंदर, हम थोड़े तरुण हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मैं तरुण हो गया हूँ, और बीच में समझो कोई कैंसर विंसर का रोग हो गया, तो फिर हम क्या सोचते हैं, मेरे को कैंसर हो गया, कोई भी रोग होने दो, तो हम क्या सोचते हैं कि मेरे को कैंसर हो गया, तो कैंसर किसको हुआ है, शरीर को हुआ है ना, आत्मा को कैंसर होता है नहीं। कुछ साल बाद हम बुढ़े हो जाते हैं, फिर हमारे शरीर के जो परिवर्तन होते हैं ना, उस हिसाब से हमारे आत्मा के भाव में भी परिवर्तन होता है। जैसे शरीर बुढ़ा हो गया, तो हम क्या सोचते हैं, अरे मेरे अभी बाल सफेद हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, हम ऐसे सोचते हैं ना, लेकिन आत्मा बुढ़ा हो गया नहीं, लेकिन ये क्या है, फिर तुम्हारा भ्रम है ना, तुम बुढ़े नहीं हुए हो, तुम्हारा शरीर बुढ़ा हुआ है, तो तुम सोचते हो तुम्हारा कैंसर हो गया, लेकिन तुमको कैंसर हुआ है क्या, नहीं, ये क्या है, तुम्हारा भ्रम है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति का समझो कुत्ते का जन्म हो गया, कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, तो फिर वो खुद को क्या समझता है, कुत्ता, फिर हम क्या कुत्ता है क्या, नहीं ना, हम तो आत्मा है ना। तो इस तरह जो भ्रम होता है ना, तो भ्रम से निकलता है कौन, निकलता है सत्वगुण निकलता है हमको, है ना। तो और सत्वगुण में जब होते हैं ना हम, तो हम सही तरीके से यथारूप में सबको पहचान सकते हैं, है ना, हर एक के अंदर परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, बैठे हैं, तो इसका भी दर्शन कर सकते हैं, है ना। कोई कुत्ते के शरीर में भी रहने दो, कोई हाथी के शरीर में भी रहने दो, कोई सांप के शरीर में भी रहने दो, तो उसके हृदय के अंदर भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप है ना, तो हर एक परमात्मा का दर्शन हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? सत्वगुण में। और सत्वगुण में होने से, सत्वगुण का एक गुण यह है कि सत्वगुण सभी इंद्रियों के द्वार में प्रकाश पैदा करता है और ज्ञान भी पैदा करता है। सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ये श्लोक है ना आज का। मतलब इंद्रियों के द्वार पे प्रकाश उत्पन्न करना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई घर का द्वार है, अगर उस घर के द्वार पे हम फोकस लगाते हैं, लाइट लगाते हैं बड़े, तो घर के अंदर कौन प्रवेश कर रहा है, थोड़ा अंदर का भी दिखता है और बाहर का भी दिखता है। तो घर के अंदर कोई चोर प्रवेश कर रहा है तो तुमको दिखाई देगा ना, क्योंकि लाइट है। और घर के द्वार पे, भले घर के अंदर अंधेरा क्यों ना हो, बेडरूम में अंदर कितने भी रूम हो, सब अंधेरा क्यों ना हो घर के अंदर, लेकिन द्वार पे प्रकाश हो गया अगर रहेगा, तो द्वार के अंदर अगर कोई चोर लुटेरा प्रवेश कर रहा है तो हमको समझ में आता है। अभी समझ में भी आ रहा है कि घर के अंदर समझो कोई चोर है, कौन जा रहा है, लेकिन अगर इस बात का ज्ञान नहीं है हमें कि वो चोर है, अच्छे आदमी है, बुरा आदमी है, इस बात का ज्ञान नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रकाश का कोई फायदा नहीं ना। प्रकाश है द्वार पे घर के, लेकिन जो अंदर प्रवेश करने व्यक्ति भी दिख रहा है हमको, लेकिन अगर इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो व्यक्ति अंदर जा रहा है वो व्यक्ति चोर है क्या नहीं, ये पता नहीं है हमको, तो फिर प्रकाश का क्या उपयोग है कुछ नहीं। इसका मतलब ये, इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि घर के अंदर जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है वो अच्छा है, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए ना। उसी तरह इधर बोला जाता है कि हमारी इंद्रियों के 9 द्वार होते हैं, जैसे घर का द्वार होता है ना, उस तरह हमारे इंद्रियों के कितने द्वार है? 9 द्वार है। तो 9 द्वार के अंदर जो वस्तु प्रवेश कर रही है वो सही है या नहीं है, इस बात का ज्ञान किस में होता है? सत्वगुण में होता है। जैसे कान एक द्वार है हमारे शरीर का, तो कान के द्वार से अगर समझो कोई फिल्मी संगीत चल रहा है, तमाशा विमाशा ऐसे गाने होते हैं ना फिल्मी, गंदे गाने, अगर वो हम सुन रहे हैं तो हमारे घर कान के द्वार से क्या प्रवेश कर रहा है अंदर? माया प्रवेश कर रही है। तो हमें उस कान के द्वार को हमें क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की कथा अगर हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन है, कथा है, तो हमें द्वार को खोल देना चाहिए। जैसे भगवद्गीता में बताया है ना, एक कछुए जो कासव होता है ना कछुआ, तो वो क्या करता है, जैसे ही संकट आता है तो वो 4 उसके पैर और एक मुंह सब जो रहता है ना सर, अंदर लेता है, और फिर उसके शरीर के ऊपर क्या होता है, ढाल होता है, मतलब ऐसा रहता है ना कवच जैसा, तो वो फिर उससे कोई उसको धोखा नहीं है। तो जैसे ही संकट आता है वो तो अंदर खींच लेता है। तो हमारे भी वैसे इंद्रियां 5 है, ज्ञान इंद्रिय, तो जैसे वो कछुआ अंदर खींच लेता है तो हमें भी हमारे द्वार को, अगर माया प्रवेश कर रही है उस द्वार से, हमें उस द्वार को हमें क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। जैसे आंख भी एक द्वार है हमारा, तो आंखों का कार्य क्या है? देखना। तो हमारे आंखों से हमें क्या देखना चाहिए? राधा वृंदावन बिहारी का दर्शन करना चाहिए, प्रभुपाद का दर्शन करना चाहिए, धाम में जाके उनका दर्शन करना चाहिए, गोवर्धन इको विलेज का दर्शन करना चाहिए, भक्तों का दर्शन करना चाहिए, है ना, जो भक्त है, सीनियर भक्त है, तो उनका हमें क्या करना चाहिए? दर्शन करना। ये आंखों से है, ये क्या है, अगर माया का दर्शन कर रहे हो आंखों के द्वारा, तो कुछ इसका मतलब क्या है? अंदर तुम्हारे घर के द्वार के अंदर से क्या, कौन अंदर प्रवेश कर रहा है? चोर प्रवेश कर रहा है, माया प्रवेश कर रही है, तो फिर उसका उससे क्या होगा? पतन होगा। तो मतलब अंदर जो सत्वगुण, अगर सत्वगुण में हम है, तो सत्वगुण का प्रभाव से हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि अंदर, और प्रकाश भी पैदा करता है सत्वगुण, है ना। अभी ये सब अच्छा है, सत्वगुण में अगर हम मृत्यु हो जाता है हमारा तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है व्यक्ति, है ना, स्वर्ग जाता है, नहीं तो वैकुंठ भी अगर शुद्ध है तो वैकुंठ लोक भी चला जाता है व्यक्ति अगर सत्वगुण में मरता है ना। अंतकाले च महामेव, श्लोक में जो बताया है ना, अगर अंतकाल में हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वैकुंठ की प्राप्ति होती है, गोलोकधाम की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या नियम है? अंतकाले हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो, इसका मतलब हम क्या है, सत्वगुण में है ना, तभी हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? हम पूरा जीवन भर उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली आखिरी वक्त में मैं भगवान का स्मरण करूंगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वो टाइम पे बहुत वेदना होती है ना, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने बोला है कि सुबह हम मंगल आरती 4:30 बजे होते हैं, सुबह मंगल आरती, उसके बाद जपा, फिर प्रवचन, गुरु पूजा, तो तो ये जो सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है श्री प्रभुपाद ने, तो उस प्रोग्राम से क्या होगा, सतोगुण हमारा बढ़ेगा। तो मॉर्निंग प्रोग्राम जो होता है ना, जो प्रभुपाद ने किया दिया है, तो उस प्रोग्राम में अगर हम आते सुबह के, तो मंगल आरती अटेंड करते हैं, जपा करते हैं भक्तों के साथ में, तो क्या होगा, सतोगुण हमारा बढ़ेगा। तो सतोगुण में अगर हमारा मृत्यु हो जाता है, समझो सतोगुण स्थिति में, तो ऊर्ध्व गति हमें प्राप्त होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब इतना भी नहीं हो सकता, कम से कम भक्त के घर में हमें क्या होगा, जन्म होगा हमारा अगला। तो मतलब जो आगे की गति होती है हमारी, अगर हम सत्वगुण में हमारा मृत्यु हो जाता है तो आगे की गति हमारी अच्छी होती है। लेकिन सत्वगुण बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सत्वगुण में बढ़ाने के लिए हमें इस्कॉन के जो मंदिर है, श्रील प्रभुपाद ने इतने मंदिरों का निर्माण किया है, तो मंदिर में आने से हमें 5 वस्तु प्राप्त होती है, और वो 5 वस्तु क्या है, ए बी सी और डी। वैसे तो 64 है, लेकिन ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग दिए हैं, तो 64 में से ये 5 है, मुख्य 5 है। तो ये मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, मतलब भक्तों का संग करना। भक्तों का संग करना मतलब फिर भक्तों के कंधे पे हाथ डाल के घूमना नहीं, भक्तों का संग मतलब उनके मुख से कथा श्रवण करना, उसको क्या बोलते, भक्तों का संग करना। नहीं तो 7 बार है हम भक्तों के संग में हाथ कंधे पे हाथ डाल के, लेकिन कथा नहीं सुना उनके मुख से, तो उसको संग नहीं बोलते। भक्तों का संग करना मतलब उनके मुख से कुछ कथा भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनको श्रवण करने से हमें संग बोलते हैं। आप मोबाइल से भी श्रवण कर सकते हैं, इसको उनके बहुत से भक्तों के प्रवचन है, अगर वो हम श्रवण कर रहे तो हम क्या कर रहे, ए कर रहे, ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी मतलब बुक रीडिंग, जितने भी प्रभुपाद के बुक्स है वो सब पवित्र है, प्रभुपाद ने रात 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 जाग के उसको लिखा है। तो अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो श्रवण करना और रीडिंग करना एक ही है। अगर कोई श्रवण कर सकता है, श्रवण करने में थोड़ा कंटाला आया तो क्या करो, रीडिंग करो, रीडिंग करने को कंटाला आया तो फिर श्रवण करो। तो बू मतलब बुक, बी मतलब क्या है, बुक रीडिंग, और सी मतलब चंटिंग है ना, चंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो प्रभुपाद ने बोला है कि सिंपल है, अगर हमको सुखी होना है भौतिक जगत में, किधर भी भौतिक कार्यों में, भौतिक जगत में किधर भी सुख नहीं है, प्रभुपाद ने बोला है। तो अगर आध्यात्मिक कार्यों में, भक्ति कार्यों में सुख है तो बी चंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जप का जप करते हैं ना हम सुबह, प्रभुपाद ने नियम दिया है 16 माला जप हमें करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, हम हमारा सत्वगुण बढ़ेगा। फिर डी मतलब डाइट, नहीं तो धाम और दोनों है। डाइट मतलब हमें प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, हमारे जीवा के द्वारा हम जो है ना, हमें प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारा वस्तु है जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया नहीं है, तो ऐसी वस्तु को हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा सत्वगुण बढ़ेगा नहीं। और धामवास, जैसे कि गोवर्धन इक्विलेज है, अनेक भक्त है, उनका संग लेना, धाम यात्रा करना, अभी कार्तिक मास आ रहा है तो कार्तिक मास में भी हम भक्तों का यात्रा के साथ संग ले सकते हैं। तो डी मतलब डाइट और धामवास, ए बी सी डी। तो इन 5 भक्ति के अंगों के द्वारा हम हमारा सत्वगुण बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हम सत्वगुण बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ऊर्ध्व गति प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे,
श्रील प्रभुपाद की जय, समवेद गौर भक्तवृंद की जय,
हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने गुणों का खेल इसके बारे में बहुत विस्तारित रूप से बताया। तो कितने गुण बताए, कितने गुण है जो नए लोग हैं बताइए, कौन से वाह, समझ गया लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया कि कैसे गुण जो है वो कार्य करते हैं हम जीवों के ऊपर, उसके परिणाम क्या होते हैं, उस गुणों के अधीन होके हम कार्य करेंगे तो उसके लक्षण क्या है उस व्यक्ति के, और कैसे इस गुण से हम बाहर उठ सकते हैं, कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बाहर उठ के हम शुद्ध सत्व पे जा सकते हैं, वो भी प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। इसके लिए हम प्रभु जी के बहुत बहुत आभारी है। और विशेष करके यहाँ पे जो पहली बार जो हमारे रविवारी सत्संग कार्यक्रम में जो आए हैं उनका भी हम
विशेष स्वागत करना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे आके इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही आप हर रविवार को ये प्रोग्राम होता है तो हम चाहेंगे कि ऐसे हर रविवार को यहाँ पे आके हमें प्रेरणा देते रहे। और हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का जीवन जो है आपका उज्ज्वल कृष्ण भावनामय जीवन की एक शुरुआत बने, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे अभी राजभोग आरती होगी और राजभोग आरती के बाद पश्चात यहाँ पे जो है सबके लिए ललिता भवन हॉल में प्रसाद की व्यवस्था की गई है। जो लोग जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया उनको कूपन मिला है, तो वो कूपन जो है वहाँ पे आपको ललिता भवन हॉल में दिखाना है। जिनके पास कूपन नहीं है उनके लिए भी प्रसाद है, लेकिन जिनके पास कूपन है उनके लिए विशेष प्रसाद है, ठीक है। तो अभी हम सब लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए, राजभोग आरती के लिए। तो माताएं जो है उस